कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। राह दिखा कर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है।
एक फैक्ट्री में कई सारे लोग काम करते थे और वो जो कारखाना था बर्फ का था, आइस प्लांट था एक। और एक दिन एक व्यक्ति जो वहां काम कर रहा था, जो इंजीनियर था, कुछ खराबी हो गई प्लांट में। इसके लिए, उसे ठीक करने के लिए समय पूरा हो गया था ड्यूटी का, उसके बाद भी काम कर रहा था और काम करते करते काफी लेट हो गया। तब तक बाकी सभी कर्मचारी जा चुके थे और उनको ये पता ही नहीं था कि ये अंदर रह गया। और अंदर एक कमरा था जिसमें वो खराबी हुई थी और वो व्यक्ति उस कमरे में जैसे बंद हो गया। और बाकी सब लोग फैक्ट्री बंद करके चले गए और वो अंदर ही रह गया। और सब तरफ से लॉक। और जब उसको ये पता चला तो एकदम से डर लग गया कि अब क्या होगा। और वहां पर टेम्परेचर, तापमान बहुत बहुत कम था, माइनस में था, तो अब तो उसका बचना मुश्किल था। अब तो सीधा गेट कल सुबह खुलने वाले थे। तो वो एकदम डर गया, सहमा हुआ और कांपने लगा। और कुछ समय बीतने के बाद एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और वो सिक्योरिटी गार्ड था। और वो सिक्योरिटी गार्ड आया और उसको बाहर ले गया। उसे आश्चर्य हुआ, इसको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं। क्योंकि बाकी सभी कर्मचारी जा चुके हैं। यह अकेला अंदर है और बर्फ ही बर्फ है सब जगह। तो वो उसको पूछता है, तुमको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूं? वो कहता है, इस कारखाने में 50 लोग हैं, उसमें से एक आप ही हो जो सुबह मुझे हेलो करते हो और शाम को मुझे बाय करते हो। आज सुबह जब आप आए तब मैंने आपको देखा था, आपने हेलो किया, पर जब आप जा रहे थे तो आप नहीं थे, क्योंकि किसी ने भी बाय नहीं किया, एक आप ही थे जो बाय कर रहे थे, इसलिए मुझे डाउट हुआ कि अंदर कोई है, इसलिए मैंने लॉक खोल के मैं अंदर आया तो सही में वो था। उसका एक छोटा सा हेलो और बाय क्या कर देता है, उसकी जीवन लीला बंद होने से, समाप्त होने से बचा देता है। बाप कहते हैं, मैं तुम्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहता हूं, चाहे तुम करो या ना करो, पर जो करते हैं वो यदि कभी कभी जीवन में कहीं फंस जाए तो भगवान स्वयं क्या करेगा, आएगा और देखेगा कहां फंसे हुए हैं। जो निरंतर उसके साथ रहते हैं, जो निरंतर उसकी याद में रहते हैं, जिनका योग निरंतर उसके साथ है, एक ही के साथ है, उनकी मदद वो हमेशा करेगा। भरते हुए किसी ने ना देखा, पर झोली भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। तो दो पार्टियां हैं, दो नंबर और तीन नंबर। क्या कह रहे बाबा पार्टी नंबर एक से, वारे मैं, कोटो में कोई और कोई में भी कोई, तुम हो कि जो तुमने ऐसे बाप को पहचान लिया। तो उसका कितना नशा होना चाहिए कि हम वो आत्माएं हैं, बाप का बनना अर्थात बाप को जानना, बाप का बनना अर्थात बाप को जानना। तो यहां पर बाबा ने नशे वाली बात याद दिलाई है कि हम कौन हैं, कोटों में कोई और कोई में कोई, दुर्लभ आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को जान लिया, जो एकदम साधारण रूप में आया जिसको कोई भी नहीं जान सकता था। अवजानन्ति माम मुड़ा, हे अर्जुन मूर्ख मेरा उपहास करते, मुझ पर हंसते हैं, मानुषी तमाश्रित, जब मैं मनुष्य तन का आश्रय लेता हूं वो मुझे पहचान ही नहीं पाते। तो हम वो आत्मा है जिन्होंने साधारण तन में आए हुए भगवान को जान लिया, पहचान लिया, अपना बना लिया, ये ही कितना बड़ा भाग्य है। ये सबसे पहली बात बताई। दूसरी बात बताई भक्ति की, भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति है अल्पकाल का आध्यात्मिक मनोरंजन और ज्ञान है सदा काल का आध्यात्मिक मनोरंजन और ज्ञान क्या है, पढ़ाई है। ये रास्ता कैसा है आशीष भाई, ज्ञान का देवेंद्र भाई, आज की साकार मुरली, ये रास्ता कैसा है? बड़ा नाजुक है। बाबा ने कहा ये रास्ता कैसा है, बड़ा ही नाजुक रास्ता है, चढ़ना उतरना अप डाउन, बहुत ही नाजुक रास्ता है ये ज्ञान का रास्ता। शरीर को देखा तो कट चढ़ेगी, आत्मा को देखा तो कट उतरेगी, शरीर की कशिश होती है। बाबा ने कहा क्या होता है, शरीर की कशिश होती है, इसलिए देही अभिमानी बनो, सभी संबंधों को भूल जाओ, केवल एक बाप को याद करो, कोई भी संबंध याद नहीं रहना चाहिए। और काका मामा चाचा सब मैं ही हूं। तो भक्ति में क्या है, अल्पकाल का है, ज्ञान में सदाकाल का है। ज्ञान ही साधन है, भक्ति में भावनाएं बहुत है, इमोशंस है, जज्बात, बहुत ज्यादा भावनाएं, भावनाओं का उहापोह, भावनाओं की हलचल, भावनाओं का अतिरेक है वहां एक्सेस। इसके लिए खुशी भी है वहां पर, परंतु वो ज्यादा समय नहीं चल सकती। जीवन में ज्ञान चाहिए, हर चीज को समझने में ज्ञान, नहीं तो यहां कोई ना कोई साक्षात्कार हो जाएगा, यहां कुछ ना कुछ दिखेगा और फंसेंगे उसमें। यहां पता चल जाएगा ये होने वाला है, वो होने वाला है, सिक्स्थ सेंस, कुछ नई शक्ति आएगी, सिद्धियां प्राप्त होगी वहां पर, और वो सिद्धियां, वो शक्ति अगर ज्ञान नहीं है तो फंस जाएंगे। इसके लिए भक्ति ऊपर से बहुत लुभावनी है, आकर्षक करने, आकर्षण करने वाली है, परंतु ज्ञान मुख्य है। और रामकृष्ण परमहंस साधना हमेशा करते हैं माता की, देवी की, काली की, और भगत है, बहुत प्यार है मां से। पर जब तोतापुरी वहां आता है, तोतापुरी अद्वैत वेदांतिन सन्यासी है, जिसके लिए संसार माया है, यह संसार है ही नहीं, मिथ्या है। तो रामकृष्ण उनके पास जाते हैं और वो रामकृष्ण कहते हैं मुझे भी आपके जैसा साधना में कराओ, मुझे भी आपके जैसा बनना है। वो कहते हैं अच्छा, तो तुमको कुछ करना पड़ेगा, तुमको संन्यास लेना पड़ेगा। वो कहता मैं माँ को पूछ के आता हूँ। बोलते कौन माँ? ये माँ भी नहीं चलता है ज्ञान में, माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं होता है ज्ञान में। वो कहता नहीं मैं पूछ के आता हूँ। वो जाता है और काली माँ से पूछ के आता है कि तोतापुरी आए हैं, मैं संन्यास लूँ क्या? माँ कहती है लो। वो आता है, कहता है माँ ने हाँ कह दिया। उसको लगता है शायद उसकी माँ होगी कोई। और वो उसको लेके जाते हैं, और वो तो एकदम नाजुक है, वो भगत है ना, उसका माँ प्रेम आंसू, नाचना झूमना गाना भाव समाधि, उसकी पहले से ही एक गुरु है भैरवी, वो तो बहुत ध्यान रखती है उसकी कि ये इस तरह के लोगों से उसको दूर रखना चाहिए जो ज्ञानी है, नहीं तो उसकी भावनाओं को नष्ट कर देंगे वो। तो रामकृष्ण को ले जाते एक कमरे में और वहां पर बिठाते और कहते अब ध्यान करो, मैं ब्रह्म हूं। तो ध्यान करने जाते तो मां दिखाई देती है, काली मां, क्योंकि भक्त है। तो तोतापुरी को कहता है कि, तोतापुरी कहता है क्या दिखा? वो कहता है मां को देख रहा हूं। कहता है कौन सी मां, कैसी मां, खत्म कर दो मां को। वो फिर से ध्यान लगाता है, फिर से मां देखता है। तो कहते कैसे खत्म करो? तो बोलता है पूछो वो मां कहां से आई, जहां से आई वहीं से खत्म करो उसको। तो वो एक कांच का टुकड़ा लेता है, उसको ध्यान में बिठाता है और यहां पर मार्क करता है और कहता है अब यहां केंद्रित करो, और तब कहीं जाके वो सारे चित्र कटते हैं, खत्म होते हैं और वो ध्यान मग्न हो जाते हैं। एक दिन, दो दिन, तीन दिन ध्यान मग्न समाधि में बैठे रहते। जो तोतापुरी को 40 साल लग गए वो उसको 3 दिन में प्राप्त हो जाता है। तो तोतापुरी तो अद्वैत वेदांतीन है, अद्वैत वेदांत अर्थात ब्रह्म। तो वहां एक दिखाया है कि कैसे ज्ञान के आधार से सब कुछ नष्ट कर दो। वैसे भक्ति एक अलग चीज है, भक्ति में बहुत भावनाएं हैं, परंतु वो भावनाएं जो भक्ति की है उन्होंने क्या दिया? बाबा ने कहा आत्मनिर्वाह के जितने खाते थे सारे भस खत्म कर दिए, कुछ भी नहीं मिले। वो द्वापर में तो मिले थे, थोड़ा बहुत जमा किया था, पर अब कुछ नहीं है। और ऐसा कोई भगत तो कोई एक ही है 5000 साल में, ऐसे हर एक नहीं हो सकता, वो तो एक ही था ऐसा, इस तरह का एकदम भोला भाला, एकदम पूर्ण श्रद्धा वाला। उनके जीवन काल में ही लोग उनको अवतार कहते थे रामकृष्ण को। तो उनको क्या कहते थे पता है? वो झाड़ पे चढ़े, एक बार गिरे वहां से और फ्रैक्चर हो गया। वो जो लोग उसको अवतार कहते थे, देखते देखो तुम्हारे अवतार को फ्रैक्चर हो गया। तो बोल देना मैं अवतार हूं, देखो अवतार को फ्रैक्चर होता है कि? उनकी हंसी उड़ाते थे। सारे अवतार। तो ज्ञान विवेक है, ज्ञान लॉजिक है, ज्ञान तर्क है, ज्ञान समझ है, ज्ञान से बेड़ा पार। भक्ति ने गेड़ा बेड़ा गर्त किया है तब, क्योंकि भक्ति भी तो तमो प्रधान हो गई है, फलहीन भक्ति है, फल रहित भक्ति है, केवल छाया रह गई है। झाड़ तो है पर केवल छाया, फल उसमें है ही नहीं। इसलिए और उसका भी कितना विस्तार है आज, धर्म सत्ता का कितना विस्तार है, पर धर्म सत्ता भी बलहीन है, शक्तिहीन है। इसके लिए ज्ञान की परम आवश्यकता है। ज्ञान ही सारे अंधकार को दूर करेगा, ज्ञान ही प्रकाश है। तो बाबा ने कहा तुम कोटों में कोई हो और तुम्हें यह ज्ञान मिला है और ज्ञान पढ़ाई है, यह तुम्हारी पढ़ाई है, इसलिए इस पढ़ाई को रेगुलर पढ़ते रहना। उसके बाद में तीसरी बात यहां कही कि इस स्मृति से क्या बनो, समर्थ बनो, इस स्मृति से समर्थ बनो। स्मृति समर्थ बनाती है, स्मृति अर्थात याद। अगर याद ही कमजोर है कोई भी चीज की याद, तो व्यक्ति अपने आप कमजोर बन जाता है। जैसे एक बीमारी है डायबिटीज और उसके ऊपर एक लेक्चर है, सब लोग सुन रहे हैं वहां बैठकर, किसी का ध्यान है किसी का नहीं है, कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, जनरल टॉक है, पब्लिक टॉक। ये पहला। अब उसमें से एक व्यक्ति घर जाता है और अपना टेस्ट करता है कुछ दिनों के बाद, और तब उसको पता चलता है उसको ही शुगर है। और फिर अगला ऐसा ही एक टॉक कुछ दिनों के बाद हुआ, तब वो जाके बैठता है, अब उसका पूरा ध्यान है। क्यों? क्योंकि अब वो खुद बीमार है, अब उसके ऊपर आ पड़ी है। पहले ये सब लोगों के लिए, वो मेरे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, पर जब खुद के ऊपर आता है तब बहुत ज्यादा ध्यान हो जाता है, तब उसकी स्मृति कुछ और ही है, तब उसकी स्मृति पहले जैसी नहीं है। अब उसको हाइटेंड अवेयरनेस कहते हैं, एकदम बढ़ जाती है उसकी अवेयरनेस, ये मेरे लिए। टीवी पर कुछ चल रहा है, भूकंप आए तो क्या करना, अब हमारे इधर कभी भूकंप आया ही नहीं सालों साल, हमारा कुछ ध्यान नहीं है, पर एक झटका लगा भूकंप का और उसके बाद टीवी पे आए, भूकंप आने के बाद क्या करना, तो एकदम ध्यान लगा लगा के सुन रहे, बेड के नीचे घुस जाना, अलग अलग जगह ये हो जाना, अब थोड़ा ध्यान से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पता है एक झटका लगा, खुद पर आ पड़ी है। तो वैसे ही स्मृति का है, स्मृति तो शक्तिशाली तब होती है जब अवेयरनेस हो, जब ज्ञान हो समय का, तब स्मृति रहती है, और स्मृति ही समर्थी बनाती है। जैसे स्मृति ही दुर्बल बनाती है, माता है कोई और मधुबन में आई है और सब्जियां काट रही है मधुबन में बैठकर, और अचानक अपने बेटे की याद आ गई, सब्जी काटते काटते क्या हो जाएंगे, आंसू बहने लगते। अचानक शक्तिशाली थी थोड़ी देर पहले, एकदम से कमजोर हो गई, क्योंकि आंसू ने घेर लिया। क्या है ये? डायरेक्ट स्मृति और परिणाम, डायरेक्ट रिजल्ट, अपरोक्ष परिणाम, डायरेक्ट परिणाम। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाते रहना, और कैसे बनेगी स्मृति शक्तिशाली? ज्ञान से, ज्ञान की पॉइंट याद करते रहना दिन भर, अर्थात सारे दिन भर मुरली रिवाइज करते रहना, किधर? मन में, आज बाबा ने क्या कहा, आज ऐसा क्यों कहा, आज वैसा क्यों कहा, ये ऐसा क्यों कहते रहता है, ये सोचते रहना, पॉइंट्स रिवाइज करना। और पॉइंट्स रिवाइज करना मन के मन में इतना आसान काम नहीं है, याद ही नहीं आता है, याद ही तो नहीं आता है। इसके लिए जो शुरुआत की रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग ही बहुत पावरफुल होनी चाहिए। पहला सुनना या पहला पढ़ना, यही बहुत पावरफुल होना, वहीं पर पॉइंट्स बन जाए ताकि फिर सारे दिन भर उसको रिवाइज कर सके। सारे दिन भर पॉइंट्स निकालना वो अलग चीज है, सुबह सुबह पॉइंट निकाल लेना वो काम करना है। सुबह ही पॉइंट्स निकल जाए कि ये इतनी पॉइंट्स है, और फिर सारे दिन भर उसको रिवाइज करते रहो। इसके लिए क्या कहा, स्मृति और समर्थि। तो फर्स्ट पार्टी से मुलाकात में तीन बातें हैं। एक तो हम सब कौन है, कोटों में कोई, भगवान ने चुना है, गॉड सिलेक्टेड, गॉड इलेक्टेड, गॉड चोजन। गॉड सिलेक्टेड, उसने सिलेक्ट किया, इलेक्ट किया है। उस दिन भी बताया है, जिसको जनता चुनती है वो संसद में, और जिसको भगवान चुनता है वो सत्संग में। एक संसद में, एक सत्संग में। एक राजा रहता है, वो ये अपने मंत्री से कहता है कि मेरे इतने सारे नौकर हैं, सबसे ज्यादा नंबर वन नौकर कौन सा है वो मुझे चाहिए। जितने भी है कर्मचारी सारे, सम टोटल जितने सेवाधारी पूरे राजभवन राजप्रासाद में, उसमें से सबसे टॉप मोस्ट जो है नंबर वन, उसको इनाम देना है, जाओ ढूंढो। वो कहता है इतने सारे हजारों है, कैसे ढूंढू और कैसे पता चले कि ये सबसे अच्छा है। कोई दिखावे के लिए भी कर रहा है, ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे से सेवा कर रहा है और अंदर से कुछ नहीं। पैमाना क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, मापदंड किस मानक से ये पता करे, कौन से स्टैंडर्ड डाले लगाए कि ये श्रेष्ठ है ये नहीं है। बहुत परेशान होता है। तो उसकी पत्नी उसको कहती है, मैं बताती हूँ क्या करना है, दो बातें, ये दो प्रश्न सबसे पूछते जाओ। दो प्रश्न है, सभी से पूछते जाओ फिर देखते हैं। तो दो प्रश्न लेके जाते हैं, हर एक से पूछते जाता है, हर एक से पूछते जाता है, अलग अलग उत्तर, अलग अलग उत्तर, अलग अलग उत्तर, अलग अलग उत्तर सब तरफ से आते हैं। और आखिरी में जाता है, एक माली होता है जो बगीचा में काम कर रहा होता है, यंग जवान आदमी, उससे पूछता है पहला प्रश्न, तुम ये सेवा क्यों कर रहे हो। बाकी सबने उत्तर दिया था, हमको पसंद है, हम राजा को खुश करने के लिए, कमाई करने के लिए, हमको घर की देखभाल करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसने क्या उत्तर दिया होगा, पहला प्रश्न था ये सेवा तुम क्यों करते हो, बागवानी, झाड़ों की देखभाल करना। वो कहता है मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम्हें सेवक बनकर सेवा करनी है और प्यार से सेवा करनी है। वो कहता है ये जो पेड़ और पौधे हैं ये मुझे बहुत प्रिय है और मैं इनका सेवक हूं, मैं ये राजा के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। पेड़ पौधे की सेवा करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उनकी, आई एम सर्विंग देम। ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, अगर तुमको इस सेवा से अभी के अभी बर्खास्त हटा दिया जाए तो क्या करोगे। दूसरे लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, राजा का हम पर विश्वास है। तो कोई कहता है कि मैं देखूंगा कोई दूसरा जॉब, और कुछ और कुछ और कुछ। इसने क्या कहा होगा, अगर अभी के अभी तुमको हटा दिया जाए इस सेवा से तो क्या करोगे, क्या कहा होगा, क्या किससे, राजा से। अच्छा, और वो कहता है और ही अच्छा होगा, क्योंकि यहां ना मेरी बिल्कुल टाइम टू टाइम ड्यूटी है और मैं पेड़ों को जितना टाइम देना चाहता उतना दे नहीं पाता, क्योंकि बस टाइम पूरा होता है मुझे जाना पड़ता है। और दूसरी बात, यहां डिस्टर्ब करने वाले बहुत लोग हैं, बोलते ये बुरा मत मानना पर ऐसे ही ये वास्तविकता है, दूसरे आके डिस्टर्ब करते, अगर मैं यहां से मुक्त हो जाऊं तो बाहर मैं पेड़ों की बहुत ज्यादा सेवा करूंगा। ये दो उसके उत्तर थे। और प्रधानमंत्री कहते हैं बस तुम चूज, तुमको चुना गया है, तुम ही हो, क्योंकि ये जो सेवा कर रहा है किसी को दिखा के लिए नहीं कर रहा है, प्रेम के लिए कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, अंदर से प्रेम है इसलिए कर रहा है, और छूट जाए उसका भी गम नहीं है उसको, और ही अच्छा है उसके लिए, उसके लिए उसको चुना जाता है। हम भी वो आत्माएं संसार की जो भगवान के द्वारा चुनी गई है, और भगवान जिनको चुनता है उसने जरूर बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सूक्ष्म बातें देखी होगी, इसलिए चुना। तो ये ध्यान अपने लिए कम रखना है, दूसरों के लिए ज्यादा रखना है कि इसको भगवान ने चुना है, अब मुझे तो चुना ही है इसको चुना है, इनको चुना है, तो जरूर इनमें कुछ ना कुछ तो है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ढंग का, माइक्रोस्कोप से भी देख लिया पर एक भी गुण नहीं दिखाई दे रहा है, पर भगवान के पास शायद कोई एक सुपर माइक्रोस्कोप होगा। भगवान के दर में गलती हो सकती है। तो यह सबसे पहली बात। दूसरा पार्टी से मुलाकात है, जहां से हमने क्लास की शुरुआत की। एक बाप, एक रस्तिति, एक मत और एक परिवार, एक एक एक। जहां एक की लगन है वहां माया आ नहीं सकती। जहां एक की याद है दिन और रात का हिसाब है, एक है तो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो वो नहीं है, एक ही रहेगा, माया आया बाप। एम चाहिए या बी चाहिए, आर चाहिए या बी चाहिए, काम चाहिए या राम चाहिए, एक ही रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स, जीसस क्राइस्ट ने कहा है दो मालिकों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते हो, एक की ही सेवा करनी पड़ेगी, या तो माया की सेवा करो या बाप की मुरीद। तो जहां लगन है वहां पर विघन नहीं है, तो जहां बाप है वहां माया नहीं है, माया से क्या हो जाता है किनारा, माया से क्या हो जाता है किनारा। तो एक रसस्थिति का क्या अर्थ है, एक रस नवरस है भक्ति मार्ग में, अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, नवरस, वो सारे रस एक में ही अनुभव, सारी टेस्ट एक में ही अनुभव, सारे स्वाद एक में ही अनुभव, सारा मजा एक में ही अनुभव। बाबा ने कहा ये मौजों का जीवन है, सब कुछ एक ही में अनुभव, एक बाप ही सब कुछ। एक अव्यक्त वाणी थी जिसमें ये एक एक का पाठ निकाला था, याद है बहुत पहले कभी, एक मुरली थी ना, एक का पाठ, जिसमें ज्ञान के नौ एक, योग के नौ एक, धारणा के नौ, सेवा के नौ, यज्ञ के नौ, परिवार के नौ, प्रभु प्रेम के नौ, अलौकिक दिनचर्या के नौ, त्याग के नौ, तप के नौ, वैराग के नौ और राजधानी के नौ, ऐसे 108 एक थे, एक 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 एक। ज्ञान के एक कौन कौन से हैं आशीष भाई, ज्ञान के एक, एक पढ़ाई, एक श्रीमत, एक मंत्र, एक मुरली, एक ज्ञान में निश्चय, एक ज्ञान का मंथन, एक ज्ञान में मगन, एक सदर्शन चक्र घुमाना, एक माया से लड़ाई, ये ज्ञान के एक। योग वाले एक, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप से प्यार, एक बाप की याद, एक बाप के प्रति समर्पण, एक बाप से सर्व संबंध, और एक की लगन में मगन, एक बल एक भरोसा, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा मैं तीसरा ना कोई, एक का सहारा, एक का आधार, और एक से रूहानियत, एक से रू रिहान, एक ही सब कुछ, एक का संग, एक से सुनना, अनेकों को सुनाना, अच्छा एक को सुनना और एक को सुनाना, अच्छा ठीक है, ये हो गया योग के। धारणा के एक, एक व्रता, एक ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, एक बाप को प्रत्यक्ष करना, एक बाप पर कुर्बान जाना, एक श्रीमत पर जीवन बनाना, एक प्रैक्टिकल और योग की, एक श्रेष्ठ योगी जीवन की, एक संपूर्ण पवित्र जीवन की, एक साथ सर्वशक्तियों की, एक साथ सारे गुणों की। फिर सेवा का एक, एक दृष्टि से सेवा, एक शुभ भावना से सेवा, एक मुस्कुराहट से सेवा, एक श्रेष्ठ चलन से सेवा, एक रसस्थिति से सेवा, एक की सेवा, एक मत से सेवा। यज्ञ के एक, ये यज्ञ कैसा है, एक ही महायज्ञ है, एक का ही महायज्ञ है, एक ही अंतिम यज्ञ है, एक ही समय पर यह यज्ञ होता है। इस यज्ञ का एक ही लक्ष्य है, एक ही सामग्री है, एक ही आहुति है, एक ही महामंत्र है, एक ही मनोवांछित फल प्राप्ति है। परिवार का एक, एक परिवार, एक मत। सोचो अभी अभी परिवार के एक कौन कौन से, एक ही बाप के बच्चे, एक ही कल्चर, एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, एक ही घर के रहने वाले, एक ही संबंध भाई भाई का। आज की मुरली में भी एक ही संबंध है तुम्हारा भाई भाई का, और एक ही संगठन, एक जैसी दृष्टि, एक जैसी वृत्ति, एक जैसी सृष्टि, एक जैसा श्रेष्ठ परिधान, एक ही ब्रह्मा भोजन सबको, सबका एक ही शत्रु, कॉमन दुश्मन है सबका। इसलिए हमारी दोस्ती और ज्यादा घनी है, घनिष्ठ दोस्ती है, क्योंकि दुश्मन एक है और एक ही कार्य और एक ही लक्ष्य। अभी प्रभु प्रेम के एक, एक गीत, एक मीत, एक रीत, एक प्रीत, एक ही के आशिक, एक ही से मिलन मनाना, एक ही से प्यार की प्यार में खोए रहना, एक के आंसू, एक के लिए आंसू बहाना, एक का गुणगान गाना, एक को ही आंखों में बसाना, एक ही साजन। तो ये हो गया प्रभु प्रेम। अलौकिक दिनचर्या, एक अमृत वेला, एक मुरली, एक ट्रैफिक कंट्रोल, एक याद, एक याद में भोजन, एक का संदेश देने की सेवा, एक का नुमा शाम का योग, एक ज्ञान का अध्ययन, चिंतन, मनन, चर्चन, एक की याद का चार्ट, एक की याद में और एक की गोद में नींद, एकांत। फिर त्याग के एक, किन किन चीजों का त्याग? एक देहभान का त्याग, एक देह के पुराने संबंधों का त्याग, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, देह की स्मृतियां, देह के धर्म, देह की दुनिया, देह की प्रवृत्तियां। एक त्याग, एक महात्याग, एक सर्वंश त्याग। त्याग पर भी एक कोर्स चला था 7 डेज का, बीच में कौन सी साल था वो, 82 की। फिर तप के 9, एक तप, तप के एक, एक गहन मौन, एक गहन एकांत, एक गहन अंतर्मुक्ता, एक गहन एकाग्रता, एक अखंड व्रत, तपस्या की बातें है ना ये सारी, एक अखंड साधना, एक अखंड संकल्प की स्थिरता, एक एक कर्मेंद्रियों को तपाना है। कैसे तपाएंगे? उस दिन कहा बाबा ने, कर्मेंद्रिया बासी है, छीछी है, कर्मेंद्रिया बासी है और छीछी है, कर्मेंद्रियों को सुगंधित बनाना है। कैसे बनाएंगे? काल काल महाकाल, मैं तुम सबको सुगंधित बना, तुम सबको गुलगुल बनाकर ले जाने आया हूं, कल था ना, काल काल महाकाल, पवित्र बना। तो कर्मेंद्रियों को शुद्ध बनाना, कर्मेंद्रियों को तपाना, तपस्या है वो, कर्मेंद्रियों को तप, आंखों को तपाना। कैसे तपाएंगे? निकाल के डालो उसको अग्निकुंड में, तपेगी वो। कान को निकालो और अग्निकुंड में डालो, जबान को निकालकर अंगी को कुंड में डालो, नाक को खींचकर अग्निकुंड में डालो, ये चमड़ी को निकालकर अग्निकुंड में डालो ताकि वो तपे। आज कहा ना, शरीर कशिश करता है, शरीर को देखा मतलब कट चढ़ी, आत्मा को देखा मतलब कट उतरी। सिंपल हिसाब है, देखने मात्र से कट चढ़ती है, धूल लग पड़ती है इसके ऊपर। ये जो लोहा है इसको कट लगने को कितना समय लगता है? धीरे धीरे लगता है। जंक, आत्मा को जंक लगती है शरीर को देखने से। कितना भारी वाक्य बोल दिया बाबा ने, कशिश करता है शरीर, खींचता है शरीर, प्यार हो जाता है शरीर से, अच्छा लगता है। एक अखंड अडिग संकल्प की स्थिरता, एक एक कर्मेंद्रियों को तपाना है। तो क्या करेंगे योग में माता जी? आंखों को और डाल देना अग्निकुंड में और एक बार तप जाए अच्छी, वापस उठा के चिपका देना। हाँ अभी ठीक ठाक दिख रहा है, ऑपरेशन हो गया। फिर वैराग के एक, पुरानी देह और देह की दुनिया से वैराग, व्यर्थ संग से वैराग, साधनों से वैराग। अदर कुमारों से बाबा ने कहा स्वप्न में भी संकल्प में, स्वप्न में व्यर्थ ना आए, साधनों से वैराग, फैशन से वैराग, घूमने फिरने से वैराग, स्वाद लोलुपता से वैराग, विलासितापूर्ण जीवन से वैराग, लौकिकता से वैराग, विकारों से वैराग। और राजधानी के एक कौन कौन सी है? राजधानी में कौन कौन सी एक है? एक राजधानी, एक भाषा, एक राज, एक पति। एक छत्र साम्राज्य, एक लक्ष्मी नारायण का छत्र, एक सम्राट, एक साम्रागी। पति पत्नी मत बोलो, एक सम्राट, एक साम्रागी, ये ठीक है। एक कुल, एक भाषा, एक मत, एक धर्म, एक आज, एक बच्चा, एक बच्ची, और एक संस्कृति, और एक शासन, एक राज्य, एक भारत। ये 108 एक है, एक सी आयु। हाँ, आयु में थोड़ा है, आगे पीछे रहेगा। तो एक रस्तिति, एक परिवार, एक बाप, एक की लगन में रहना और उसकी याद में रहना। तो हम उसकी याद में जब है उसको याद कर रहे हैं दो बार, और उससे भी ज्यादा बार अगर हम कहीं बीच में खो गए तो सिक्योरिटी गार्ड की तरह वो आके देखेगा, आज क्यों नहीं, अमृत वेला नहीं दिख रहा है, कहां हो गया, कहां खो गया, बर्फ में कहीं ठंडा तो नहीं होगा, माया की बर्फ में, माया की बर्फ में कुछ हो तो नहीं गया इसको। तो नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये बड़ा ही क्या है, नाजुक रास्ता है। हर एक बात तुमको नजदीक देखने में आएगी जितना तुम ज्ञान योग में मजबूत होते जाएंगे। आज की मुरली के महावाक्य है कि जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे हर एक बात तुमको नजदीक देखने में आएगी। इसके कई सारे अर्थ हो सकते हैं। वो सत्यु की बातें स्थूल की वो हो सकती है, अपने अवगुण वो भी हो सकती है, अपना संपूर्ण स्वरूप भी हो सकता है, क्या हो सकते हैं, अपनी कमियां भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो ये दो पार्टियों से यहां बाबा ने मुलाकात की, एक तो कोटो में कोई, कोई में कोई, दूसरा बताया, दूसरा बताया भक्ति और ज्ञान, तीसरा बताया स्मृति, फिर दूसरी पार्टी जिसमें फिर से दो बातें, एक तो एक वाली बातें हैं और एक माया और विघन की बातें। बाप है तो माया नहीं, माया है तो बाप नहीं। तो ऐसी ये दो मुरलियां है। अच्छा, ओम शांति।
तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे गहरे सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को, जैसे दीप्ति मिली तपते मन को मेरे।